నమో సిద్ధాయం నమో ఆయిరియాణం నమో ఉవజ్జాయాణం నమో సర్వసాభూణం ఈశు పంచ నమో యారు సర్వ పావ ప్రణాశను మంగళాణం చ సవ్వేషిన్ పఠమం భవై మంగళం చత్తారి మంగళం అర్హంత మంగళం సిద్ధ మంగళం సాహు మంగళం కేవలి పండతో ధమ్మో మంగళం చత్తారిలుగుత్తమా అర్హంతలుగుత్తమా సిద్ధలుగుత్తమా సాహులోగుత్తమా కేవలి పండతో ధమ్మోలోగుత్తమా చత్తారి శరణం పవ్వజ్జామి అర్హంత శరణం పవ్వజ్జామి సిద్ధ శరణం పవ్వజ్జామి సాహు శరణం పవ్వజ్జామి కేవలి పండతో ధమ్మో శరణం పవ్వజ్జామి నమో నాణస్ నమో దంశనస్ నమో చరిత్రస్ నమో తవస్ పరమ పూజనీయ దేవాదిదేవ తీర్థంకర శ్రీ శాంతినాథ భగవాన్ కీ సమయసార గ్రంథరాజ్ కీ ఆచార్య శ్రీ గురు విద్యాసాగర్ మునిరాజ్ కీ ఆర్యకాశ్రమ కీ పంచగురు భక్తి కలుస్తారు.
Thank you.
दीक्षा निबंध पंच महागुरुवृत्ति का औसत कौन तस्लोचय अर्थ महापाड़ी हेर संयुक्ताणम अरहंताणम अठ गुण संपन्नाणम उद्लोय मथयम विपैठ्याणम सिद्धाणम अठ पवेण माओ संयुक्ताणम आयर्याणम आयाराद सुजनाणोपदेशयाणम वज्जायाणम तिर्यण गुण पालनरयाणम शब्दसाहूलम मिच्छकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुखखौ कमखौ बोहिलाहौ सुवै गमनं समाहि मरणं जीवो संपत्तिहु मज्जन पंच परमेश्वर भगवंतों की जय। मंदिर तु सर्व सिद्धि भुवमचल मणोवम पत्ते वोक्षाम समय पाहुड मिणमु सुय केवली भणियम कल का प्रश्न क्या है? घड़े की रचना मिट्टी से होती है, मिश्रे से मिट्टी घट का कर्ता निर्माता है। मिट्टी का द्रव्य जो होता है वो घट का निर्माता है, और व्यवहार से घड़ा किसने बनाया? कुमार ने। पर अब आचार्य कुंदकुन स्वामी कहते हैं कि कुमार की आत्मा, कुमार का जीव घड़ा बनाने में निमित्त भी नहीं है। क्यों नहीं है? निमित्त नैमित्तिक नैमित्तिक भावेनापि न कर्तास्ति। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता बोलते हैं ना व्यवहार में। रोटी बनाई तो अमुक व्यक्ति ने रोटी बनाई तो उसको निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता बोलते हैं। निमित्त का मतलब जिसके सहयोग से कार्य होता है, और उसकी परिभाषा आप तो परीक्षा की नवी कारिका में ऐसे भी थी कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो, उसे निमित्त कहते हैं। अष्टशती में एक पंक्ति है कि तद सामर्थ्यम अखंडयत् कथम सहकारी कारण अकिंचित कर्म स्यात्। उस उपादान की असमर्थता को अखंड बनाने वाला, अर्थात असमर्थता को समर्थता में बदलने वाला जो सहकारी कारण है, जो सहयोगी कारण है निमित्त, वो अकिंचित कर्म कहीं स्यात्। अकिंचित कर्म कैसे हो सकता है? अर्थात निमित्त कुछ भी नहीं करता, ये बात कैसे संभव है? कि उसकी असमर्थता को तो मिटाता है ना निमित्त। अब वो वैसा एक परिणमन है, ये वस्तु की ऐसी व्यवस्था है, फिर वस्तु की ऐसी शक्ति है कि वो उसके सहयोग से काम कर लेती है और ये उसको सहयोग दे लेता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सर्वथा निरपेक्ष हो, है दो, ये एक द्रव्य अलग है और वो दूसरा द्रव्य अलग है और उसकी पर्याय उसमें है, इसकी पर्याय इसमें है, पर तो भी इनका परस्पर में सापेक्ष एक ऐसा परिणमन होता है कि वो इस रूप नहीं होता, ये उस रूप नहीं होता, लेकिन उसके बिना ये अपने उस पर्याय को प्राप्त नहीं होता और इसके बिना वो जो भी सहयोग ले रहा है वो उस रूप परिणत नहीं होता। जैसे आटा है तो आटे से रोटी कभी ऐसे बनती हुई दिखी किसी को? सवेरे गए और रसोई घर में भगा भग बिल्कुल रोटियां भरी हुई मिल गई, नहीं होती, अपने आप ऐसे होता नहीं काम। उसका जो उसकी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत वो सारे कार्य होते हैं। इसको निमित्त नैमित्तिक भाव कहते हैं। निमित्त और नैमित्तिक इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लो। निमित्त जिसने सहयोग दिया और उस सहयोग से उपादान में जो घटना घटी उसको नैमित्तिक कहते हैं। जैसे निमित्त था कोई पाक कला में कुशल व्यक्ति और उसने मटर के अथवा रोटी या और किसी प्रकार के कोई व्यंजन का निर्माण किया, कुछ ऐसे पराठे टाइप की कोई वस्तु बना ली, तो वो जो वस्तु बनी उसकी वो अवस्था जो हुई है तैयार आटे और उन पदार्थों से, तो वो पदार्थ तो उसके उपादान हो गए पर जो अवस्था तैयार हुई, जो पर्याय बनी है, तो उस पर्याय में जो सहकारी था वो निमित्त, पर निमित्त के सहकार से जो अवस्था हुई है वो नैमित्तिक। चावल के दाने भात का उपादान कारण है, और चावल को भात बनाने में जो सहयोगी है वो सारे निमित्त कारण है, और निमित्त कारणों के सहयोग से जो भात बना है वो भात की जो पर्याय है वो नैमित्तिक है। अब समझ में आया? और दृष्टांत, और कोई दृष्टांत भी दिया जा सकता है। जैसे चित्रकार ने चित्र बनाया, अब चित्र जिन रंगों से बना वे रंग उस चित्र के उपादान कारण है, ठीक है, और फिर जो तूली का और बाकी कलाकार की कला उसके सहयोग से जो कुछ बना है, सहयोग देने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो निमित्त है, और उनके सहयोग से जो अवस्था तैयार हो गई चित्र वो नैमित्तिक है। तो निमित्त को ध्यान में रख करके अगर किसी कार्य को देखते हैं तो वो कार्य नैमित्तिक कहलाता है, और उपादान को ध्यान में रख करके अगर उस कार्य को देखते हैं तो उपादान से वो उपादेय बन जाता है। हे और उपादेय वाला उपादेय अलग है, शब्दों में भ्रमित नहीं होना। जैसे उपयोग शब्द है, उपयोग शब्द का अर्थ जैनागम में ज्ञान और दर्शन रूप है, और लौकिक क्षेत्र में उपयोग का अर्थ मेरा उपयोग नहीं लगता, तो अब इसको जनता क्या समझेगी कि ये किसी काम का नहीं है यही समझेगी ना जनता। तो और परिणाम, अब परिणाम का अर्थ लोक में क्या है? फल। परिणाम का अर्थ फल होता है, और फिर बोले कि मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं तो वो जनता समझेगी कि ये नापास हो रहे हैं तो जिसके सामने अपन जिस शब्द का व्यवहार करते हैं पहले इस बात का विवेक होना आवश्यक है कि सामने वाला उस शब्द के किस अर्थ का ज्ञान रखता है। अगर आप अजैन जनता के सामने कुछ बताना चाहो और वहां पर परिणाम और उपयोग की चर्चा करो तो फिर उसको वही समझ में आएगा जो उसको पहले से पता है। जिस शब्द का अर्थ उसको ज्ञात नहीं है वो अर्थ वो लगा ही नहीं सकता और आपका व्याख्यान पूरा हो सकता है 1.5 घंटे का और सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये निमित्त के मुख से अर्थात निमित्त की तरफ से अपन दृष्टि डालें तो माँ ने रोटी बनाई, माँ निमित्त है, रोटी नैमित्तिक है। अब समझ में आया। चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्रकार निमित्त है और चित्र नैमित्तिक है। अब उपादान के मुख से देखो, आप उपादान की दृष्टि से देखो, आटा उपादान है और रोटी क्या है? थोड़ा ठंडे दिमाग से देना उत्तर सोच करके। उपादेय है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहां उपादान की चर्चा है वहां पर निमित्त कौन हो जाता है और जहां निमित्त की चर्चा होती है वहां निमित्त नैमित्त की चर्चा होती है। वहां पर फिर निमित्त के बाद फिर उसको उपादान की चर्चा नहीं करेंगे, निमित्त की चर्चा करते समय निमित्त नैमित्तिक भाव कहलाएंगे। उपादान की तरफ से चर्चा करो तो उपादान उपादेय भाव, पर ये जो उपादेय है इसको उस उपादेय के साथ मिक्स मत करना। कौन से उपादेय? हे उपादेय। हे उपादेय वाला उपादेय शब्द अलग है, वहां पर उपादेय का अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, और यहाँ पर उपादेय का अर्थ क्या होता है? उपादान के कार्य को उपादेय कहते हैं। लिख लो अगर लिखना हो तो, उपादान के कार्य को उपादेय कहते हैं। और जहां हे उपादेय की चर्चा होती है वहां पर उपादेय शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, हे का अर्थ होता है हातुम योग्य, हे छोड़ने योग्य। आगे समझ। तो अब यहां पर जो चर्चा निकली थी कि मिट्टी से घड़ा कुम्हार ने बनाया, ये तो बिल्कुल निर्विवाद बात है, सब लोग जानते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से बनाता है। तो इसमें उपादान उपादेय की अगर चर्चा करो तो मिट्टी से घड़ा बना या मिट्टी ने घड़ा बनाया? मिट्टी उपादान है और उसका कार्य उपादेय हो गया, तो ये उपादान उपादेय की बात ऐसी हो जाती, वैसी व्यवस्था बनती। फिर निमित्त नैमित्त की व्यवस्था क्या बनेगी? कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार निमित्त है और जो उसने बनाया है वो नैमित्तिक है। अब समझ में आ गया। आचार्य कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं कि कुम्हार घड़ा में निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया है। घड़ा कैसे बना? मिट्टी से बना वो चर्चा नहीं कर रहे अभी, अभी चर्चा निमित्त नैमित्त की चर्चा है कि घड़ा किसके निमित्त से बना है। आचार्य कहते हैं कि कुम्हार के निमित्त से नहीं बना। ये है विचित्र बात, देखो ये गहराई है। आचार्य कहते हैं जीवो न करे दिघडम नेव पडम नेव शेष गे दबे जो गुवोगा उपा दगायते सिंहवदिकता। जो जीव है वो घड़े की रचना नहीं करता, वस्त्र नहीं बनाता और अन्य किसी भी पदार्थ की किसी पर्याय को जीव नहीं रचता, अर्थात किसी का निर्माण जीव नहीं करता, चित्र भी नहीं बनाता, घड़ा भी नहीं बनाता, रोटी भी नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता। फिर कौन बनाता है? अभी निमित्त नैमित्त की चर्चा हो रही है तो जीव निमित्त नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य महाराज सीधी सीधी बात। तो जीव यदि निमित्त नहीं है घड़ा बनाने में तो फिर घड़ा बनाने में निमित्त कौन है? तो आचार्य कहते हैं कुमार की शरीर संबंधी चेष्टा, कुमार का जीव नहीं है। देखो कुमार के हाथ पांवों की हलचली वो घड़े के बनने में निमित्त है, तो घड़ा किसके निमित्त से बना? कुमार के योग से। पर वो योग निराश्रित नहीं है, निराधार नहीं है, वो योग यानी मन वचन काय की चेष्टा, उसको योग कहते हैं ना, तो वो योग उसके उपयोग के आश्रित है। वो जब तक अंदर विकल्प ना करे कि मुझे घड़ा बनाना है, तब तक घड़ा नहीं बनेगा। तब तक वो हाथ पांव हिलाएगा ही नहीं। तो क्या दो निमित्त बना दिए घड़े की रचना में? दो निमित्त बने। कौन से दो निमित्त? कुमार के शरीर की चेष्टा और कुमार के विचार। विचार न हो तो चेष्टा न हो, चेष्टा न हो तो मिट्टी का वो आकार न बने, मिट्टी का आकार न बने तो फिर घड़ा की रचना नहीं हो सकती। मैंने कुमार का जीव अभी भी कहीं दूर है, जीव अभी भी उसमें शामिल नहीं है, उसका भी विभाग कर दिया ना। ये निमित्त नैमित्तिक भाव व्यवहार नय का विषय है, निश्चय नय का विषय नहीं है। और व्यवहार नय में जितने भी भेद कर सकते हो उतने भेद कर लो। एक आगम का व्यवहार नय होता है और दूसरा अध्यात्म का व्यवहार नय होता है। अध्यात्म वाला व्यवहार नय जो होता है वो मिला जुला करके बोल देता है किसी विषय के बारे में, और आगम वाला जो व्यवहार होता है वो भेद प्रभेद करता चला जाता है। अभेद में भेद करना ये आगम संबंधी व्यवहार नय का कार्य है, और अध्यात्म संबंधी व्यवहार नय का काम है कि भिन्न को अभिन्न करना। अब इसको अगर नयों की भाषा में अपन देखें न्याय ग्रंथों में जाकर, तो फिर एक सद्भूत व्यवहार है और दूसरा असद्भूत व्यवहार है। और समयसार ग्रंथ में जिस व्यवहार नय को मिथ्या कहा, असत्य कहा, वो असद्भूत व्यवहार को मिथ्या कहा है। सद्भूत व्यवहार तो मिथ्या नहीं है, भूतार्थ है। इसी प्रकार निश्चय में भी दो भेद किए थे, उसमें भी एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ है। तो निश्चय जो शुद्ध निश्चय है वो भूतार्थ है, और अशुद्ध निश्चय जो है वो अभूतार्थ है। इस प्रकार का विभाग किया था शुरू में। तो शेषज्ञ दवे कोई बाकी पदार्थों की भी रचना जीव नहीं करता है। अभी अपन कुमार को जीव मानकर ही कह रहे थे ना, व्यवहार में से तो कुमार जीव है ना, मनुष्य। तो वो जो जीव है कुमार, वो घड़े को निमित्त रूप से भी नहीं बनाता। निमित्त रूप से उसके शरीर की चेष्टा बनाती है घड़े, और शरीर की चेष्टा कैसे निर्मित होती है? उसके विचारों से। वो अगर न सोचे कि घड़ा नहीं, आज वो सोचे कि आज छुट्टी रखो तो बनेगा घड़ा? एक भी नहीं बनेगा। तो विचार होना भी आवश्यक है ना। तो योग और उपयोग ये घड़े के बनने में निमित्त कारण है। जीव करेगा, पर वो विचार जो है वो जीव नहीं है। विचार जो है वो जीव का विकार है। हाँ, और क्या, निर्विकार हो जाए तो फिर क्या उसकी क्या पड़ी घड़ी? फिर तो तत्व चिंतन करके या फिर ध्यान लगाकर मोक्ष का प्राप्त वो करेगा पुरुषार्थ। तो देखो कर्ता भाव को कहाँ कहाँ तक जाकर के आचार्य महाराज ने तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत गहराई तक के अपने अंदर बैठा हुआ है ये भाव। अभी देखो कल के प्रवचन, कल के स्वाध्याय को सुनने के बाद और आज के स्वाध्याय में आने तक आपने बीच में कितनी बार कर्ता भाव किया है। 24 घंटे में कितनी बार ऐसा भाव हुआ कि मैं ये करूं वो करूं ऐसा करूं वैसा करूं? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ भगवान की तरफ देख करके बोलो कि नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? भाषा तो दोनों एक जैसी बोलते हैं, क्योंकि जो लोक व्यवहार है वहां पर आप दूसरी भाषा में बोल नहीं सकते। वो आपको उदाहरण याद हो हेडमास्टर वाला, वो पूछे कि भाई क्या नाम है दाखिल कराना तुम्हारे बच्चे को? अरे जीव का कोई नाम होता है क्या? बिना नाम के वहां काम नहीं चल सकता संसार में। तो सम्यक दृष्टि जीव भी व्यवहार में पूरी वही भाषा बोलता है जो मिथ्या दृष्टि बोलता है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी एक उदाहरण है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय की जो ढूंढारी भाषा की टीका है उसमें एक सुंदर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? मैनेजर, मैनेजर होता ना तो वो मालिक नहीं होता। बहुत सुंदर दृष्टांत है। मैनेजर मालिक नहीं होता, लेकिन बोलचाल में पूरे मालिक की भाषा बोलता है। कभी आपने सुना? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, एकदम इतने स्वाभिमान के साथ बोलता है। ये हमारे यहाँ उधार नहीं चलता, हमारे यहाँ दो नंबर के काम नहीं होते, ऐसी इस टाइप की भाषा बोलता है वो। मैनेजर जैसी भाषा, वो उसकी मालिक जैसी भाषा बोलता है। पर मैनेजर मालिक नहीं है, और फिर सब रकमों का लेन देन सारा संभाल लेता है वो। इतना सब करने के बावजूद मेरा तेरा सब कर रहा है वो व्यवहार में, लेकिन निश्चय से जानता है कि मेरा उतना ही है जितना मेरे लिए मालिक ने फिक्स किया है। समझ में आया? बस इसी प्रकार सम्यक दृष्टि व्यवहार में सब कुछ बोलता है, मेरा बेटा, मेरे माता, मेरे पिता, सब कुछ बोलता है, लेकिन अंदर से जो मालिक ने कहा है जिनेंद्र भगवान ने कि तेरा तो केवल तू ही है, तेरा सो एक, दूसरा तेरा नहीं है, सिर्फ तू ही तेरा है। तो निश्चय से वो इस बात को जानता, भूलता है। अगर मैनेजर भूल जाए कि वास्तव में मेरा क्या है, तो मालिक उसको नौकरी से निकाल दे। इसी प्रकार अगर सम्यक दृष्टि भूल जाए कि मेरा क्या है, तो फिर जिनेंद्र भगवान उसको कह देंगे कि अब तू उस गुणस्थान की श्रेणी से बाहर हो जाए। कौन से गुणस्थान से? चौथे से लेकर जितने भी गुणस्थान है ऊपर वाले, उस डिपार्टमेंट से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जाओ तुम उस डिपार्टमेंट में चले जाओ, उस विभाग में चले जाओ मिथ्या दृष्टियों से, क्योंकि तुम मालिक बन गए ना, तुम कर्ता बन गए कि नहीं? पर द्रव्य की पर्यायों का कर्ता कैसे हो सकता है कोई पदार्थ? प्रश्न ही नहीं। अगर पर द्रव्य की पर्यायों का कर्ता बन जाए कोई, तो सारी व्यवस्था चौपट हो जाए, क्योंकि कर्ता बनने के लिए तन्मय होना पड़ेगा, और तन्मय होते समय क्या स्थिति बनेगी? अगर जीव अजीवमय हो गया, अजीव से तन्मय होने का अर्थ क्या हुआ? अजीवमय हो जाना। जीव अगर अजीवमय हो गया और पुद्गल जीवमय हो गया, तो फिर जीव और पुद्गल द्रव्य सुरक्षित रहेंगे क्या? जो अनादि से सुरक्षित है, अनादि से जीव ने अनंतो शरीर धारण करके छोड़ दिए, लेकिन जीव जीव रहा और पुद्गल पुद्गल, तो ये व्यवस्था खंडित हो जाएगी। पर ये व्यवस्था चूंकि अखंड है, जिनेंद्र प्रणीत है, तो फिर अपन सिर्फ मान्यता बना सकते हैं किसी प्रकार की विपरीत मान्यता, पर वस्तु व्यवस्था तो यथावत रहती है। जगत अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। बस संसारी प्राणी अपने राग द्वेष मोह के कारण संकल्प विकल्प करके खुद परेशान होता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को आकुलित नहीं करता, अपन अपनी इच्छाओं से परेशान है। वो आपको याद है उर्दू पंक्ति हमने सुनाई थी कि तमन्नाओं ने ही हमें इंसान बना रखा है, वरना हम खुदा होते। एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, क्यों होती आशाएं? कषायों के कारण। तो एक बार अपने अंदर, ये तो सम्यक दृष्टि में भी आशा होती है, इच्छाएं होती है, सम्यक दृष्टि भी सांसारिक सुखों की कांक्षा करता है। निकांक्षित अंग का अर्थ ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि को सांसारिक सुखों की आकांक्षा नहीं होती। ऐसा कौन कहता है कि सम्यक दृष्टि को आकांक्षा नहीं होती? इसके कितने दृष्टांत हैं। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चलाया, तो वो कौन से सुख की आकांक्षा से चलाया? श्री राम ने रावण से युद्ध किया, उसमें क्या आकांक्षा थी? मोक्ष की आकांक्षा थी क्या? रावण से युद्ध करके फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं था। और कितने लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, और सम्यक होने के बाद भी कितनी सारी स्थितियां बनती हैं। तो सांसारिक सुखों की आकांक्षा सम्यक दृष्टि में नहीं होती, तो पंचम गुणस्थान तक निदान नाम का अर्थ ध्यान कैसे संभव है? निदान ध्यान का अर्थ क्या मालूम? भोगों की इच्छा, इंद्रिय सुखों की इच्छा, भावी सुखों की इच्छा, उसका नाम निदान है। और संलेखना के अतिचार में बताया कि निदान है, मतलब ये हुआ कि संलेखना में भी निदान की स्थिति हो सकती है। यदि अतिचार रूप दोष लग जाए संलेखना में तो वो निदान रूप अतिचार हो सकता है, पर वो जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दृष्टि को सांसारिक सुखों की आकांक्षा होती है, फिर निकांक्षा का अर्थ का अंग का अर्थ क्या हुआ? निकांक्षित अर्थ का उसका अर्थ क्या बनेगा? निकांक्षित अंग, भोगों की आकांक्षा नहीं होती सम्यक दृष्टि को, तो फिर निदान कैसे होता है पांचवें गुण स्थान तक? बहुत सुंदर बात माता जी ने जो श्लोक कहा है रत्नकरण श्रावकाचार्य का, उसमें श्रद्धा नाकांक्षण स्मृता नास्ति आकांक्षण यस्याम असौ श्रद्धा अनाकांक्षणा। इतना सूक्ष्म पकड़ करके आचार्य सामंतभद्र स्वामी ने इस बात को प्रस्तुत किया है, भले कोई समझे या ना समझे लेकिन वो नहीं चूके हैं आचार्य महाराज ने, तो वो बात स्पष्ट कर दी उस काव्य में। श्रद्धा अनाकांक्षणा अर्थात ये हुआ, आचार्य महाराज ये नहीं कह रहे कि सम्यक दृष्टि में आकांक्षा नहीं होती, आचार्य से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन में आकांक्षा नहीं होती। बहुत गहन रहस्य है, सम्यक दर्शन में आकांक्षा नहीं होती, सम्यक दृष्टि में आकांक्षा हो सकती। सम्यक दर्शन एक गुण है और सम्यक दृष्टि गुणी है, गुणी बहुत बड़ा होता है, रहेगा ना? सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन गुण है तो सम्यक दर्शन गुण में आकांक्षा नहीं होगी, उसमें रहेगी, तभी तो पांचवें गुण स्थान तक निदान है। और इसका खुलासा यह है कि सम्यक दृष्टि जीव 100 रुपए के लिए अदालत तक पहुंच सकता है लड़ाई झगड़ा करके, या 1000 रुपए के लिए, या कोई भी रकम आपको जो पसंद हो उतने फिक्स कर लो कि इतने रुपए के लिए वो अदालत तक लड़ाई झगड़े कर सकता है, भाई भाई के बीच में युद्ध कर सकता है। लेकिन करोड़ों की संपदा के लिए भी वो अपनी श्रद्धा को विचलित नहीं करेगा। नहीं आया समझ में? मैंने 100 रुपए के लिए मारामारी करने को तैयार हो सकता है, लेकिन करोड़ों अरबों की संपदा के बदले भी अपनी श्रद्धा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता, ये उसका निकांक्षित अंग है। अब उसको श्रद्धा ले लें, फिर श्रद्धा के साथ में श्रद्धा से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो अनंतमति ने गुरु की श्रद्धा से उनके चरण सानिध्य में अष्टान्निका पर्व के समय ब्रह्मचर्य का नियम लिया, पर चूंकि अवधि अनिश्चित रखी तो उसने आजीवन जीवन इसका पालन किया, और कितने भी प्रलोभन क्यों न प्राप्त हो वो उससे विचलित नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि के अंदर लोभ नहीं होता, लोभ होता है, लेकिन ऐसा लोभ नहीं होता जो उसे धर्म छुड़वा दे। नहीं ऐसा समझ कि उसकी श्रद्धा उसका धर्म किसी प्रलोभन से छुड़ाया नहीं जा सकता, इसका नाम है निकांक्षित अंग। पर बाकी उसके व्यावहारिक जीवन में देखो तो वहां पर उसको अनेक प्रकार की कांक्षाएं हो सकती है। बड़े बड़े राजाओं ने मुनिराज से पूछा है कि हम कब तक निस्संतान रहेंगे, अतिमुक्तक मुनि से देवकी और वसुदेव ने पूछा था कि नहीं, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 8 पुत्र होंगे, वहां जैन महाभारत में 7 पुत्र आते हैं, उनके यहाँ पर 8 आते हैं, और 7वां जो पुत्र होगा वो नारायण होगा, कहा था कि नहीं? तो फिर ऐसी आकुलता तो होती है ना, सम्यक दृष्टियों को सांसारिक विषयों में आकांक्षा हो सकती है और उस आकांक्षा से उत्पन्न होने वाली आकुलता भी हो सकती है, पर वो किसी भी प्रलोभन में आकर के धर्म को नहीं छोड़ सकता। कोई अगर कह दे कि हम तुम्हें 10 लाख देते हैं तुम जैन धर्म छोड़ करके वहां आने लगो, अब वो चाहे कितना भी गरीब भूखा मर रहा हो तो भी वो बोलेगा कि मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने आराध्य को नहीं छोड़ूंगा। मरना स्वीकार है लेकिन आराध्य का त्याग असंभव है, क्योंकि और कोई आराध्य है ही नहीं, मेरा एक ही शरण है मेरे लिए, तो अगर उसी शरण को मैं छोड़ दूं तो फिर कहां जाऊंगा, क्योंकि यहां इन पैसों से तो सिर्फ भौतिक सुख मिलने वाला है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। 10 लाख से मेरी आत्मा का क्या भला होगा, कुछ नहीं, वो धूल के बराबर है मेरी आत्मा के लिए। लेकिन जो मेरे आराध्य हैं वो तो भव भव में मेरा उद्धार करेंगे, मैं नहीं छोड़ सकता। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है, नहीं कम से कम इसको कहते हैं। तो ये आकांक्षाएं होती है सम्यक दृष्टि में भी मिथ्या दृष्टि में, पर वो विभाग याद रखिए आप, मैनेजर और मालिक। मालिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्वामी बोलते हैं। वाह मैंने संस्कृत शब्द भी इंग्लिश में आ गया, ओनर बोलते हैं, सही बात है ओनर, और ये मैनेजर, तो दोनों में कितना अंतर है। तो सम्यक दृष्टि मैनेजर का काम करता है, भले करोड़ों की संपदा हो उसके पास लेकिन वो अंदर से जानता है कि मैं सिर्फ इसका मैनेजर हूं। ये पुण्य लक्ष्मी पुण्य की संगिनी है, किसी मनुष्य की नहीं। मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि मैं लक्ष्मी का स्वामी हूं, वो स्वामी नहीं है, उसका पुण्य है लक्ष्मी का स्वामी। जब तक उसके पास पुण्य है तब तक लक्ष्मी उसके पीछे है, और पुण्य समाप्त हो। जबलपुर में देखो जो बड़ा बाजार है फुहारे के पास, वहां पर एक व्यक्ति था और उसका नाम था, वो इतना बड़ा सेठ था कि उसके नाम से सब पूरी मार्केट में उसका सबसे बड़ा नाम था। और जब उसके अशुभ कर्म का उदय आया तो ऐसा कंगाल बना, वो ऐसा कंगाल बना कि आज जब हम थे जबलपुर में, बहुत साल पुरानी बात है, तब वहाँ जो माताएं थी जबलपुर में जैन माताएं, वो उनसे बोलती थी कि आज हमारे यहाँ कर लेना भोजन। वो ऐसे भटकते रहते थे, जिसको गुजरात में बोलते ना कि रखड़े छे, ऐसे रखड़ने वाली स्थिति हो गई थी। तो देर नहीं लगती करोड़पति को रोडपति बनने में, कल का करोड़पति आज का रोडपति, रोडपति का मतलब रस्ते पर फिर रहे। तो उसको वो जैन माता है, उसको भोजन के लिए दोपहर को एक थाल में भोजन दे देती है, और वो उनकी दुकानों के बाहर जो जमीन रहती है ना थोड़ी सी, एक सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद जो जगह रहती है वहाँ बैठ करके वो ऐसे कोने में भोजन करते थे। एक बार उनको हमारे पास लाया कि महाराज क्या हो गया इनका, कैसा कर्म उदय में आ गया। उन्होंने बोला कि ये तो सब संसार, इसी का नाम तो संसार है। हमारे गुरु तो कहते हैं कि अभाव का नाम संसार है, संसार है तब तक कोई ना कोई अभाव अवश्य होगा। अभाव यानी पूर्ति नहीं होगी, हर चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होते हुए भी उसको उसको तृप्ति नहीं हुई, उस 7वां खंड ढूंढने चला गया कि और कोई है क्या 7वां खंड, उसको भी जीत ले। मिथ्या दृष्टि था, नरकगामी था। तो ये स्थिति होती है, वैसे चक्रवर्ती पद सबको प्राप्त नहीं होता, और ये सब नियम से भव्य होते हैं। 169 पुण्य पुरुष सारे के सारे मोक्षगामी होते हैं भविष्य में, और कुछ तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, पर ये दशा होती है। तो इतना समझ लो कि बार बार आचार्य कुंकुम महाराज ये बतलाना चाह रहे हैं कि तुम कर्ता मत कर्ता बनने के चक्कर में मत पड़ो, तुम मालिक बनोगे तो तुम्हें दुख होगा, कर्ता बनोगे तो रोओगे, एकत्व बुद्धि रखोगे परेशान हो जाओगे। ये 4 प्रकार की बुद्धियों को, इन धारणाओं को तोड़ दो। शरीर और मैं एक ही तो है, ये एकत्व बुद्धि होगी। एकत्व बुद्धि को 2 और शब्दों से आगम में अध्यात्म में बताया गया है। एकत्व बुद्धि को दूसरे शब्द में अहंकार भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम विकल्प भी है। मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा हूं, मेरे मत बोलो। अभी देखो आप लोग बहुत फास्ट चलते हैं, जितना बोला है उतना सोचो, मेरा जो है वो संकल्प हो गया, वो ममकार हो गया, वो स्वामित्व बुद्धि हो गई। तो लिख लो आप, एकत्व बुद्धि, अहंकार और विकल्प, ये तीन से बेकारवाची है। फिर दूसरी स्वामित्व बुद्धि, ममकार और संकल्प, ये भी एक अर्थवाची है। पर इसमें ये ध्यान रखना कि संकल्प शब्द का वो अर्थ मत लेना जो लौकिक क्षेत्र में प्रचलित है। मैं संकल्प करता हूं कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो संकल्प अलग है, उसका अर्थ होता है प्रण, प्रतिज्ञा। लेकिन यहां पर जो संकल्प शब्द है उसका अर्थ ये मेरा वो मेरा, ये मेरा मेरा वाला भाव है, इसको संकल्प कहते हैं। और विकल्प यानी मैं से संबंधित जो भी भाव आता है वो विकल्प, और मेरा से संबंधित जो भी भाव आता है वो संकल्प। इसी को दूसरे शब्दों में कहो, मैं से संबंधित जो भी है वो अहंकार है। अब अहंकार का अर्थ अभिमान हो ऐसा नियम नहीं है, कुछ अहंकार अभिमान रूप भी होता है, कुछ अहंकार नकारात्मक भी होता है। मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हूं, मेरा दिवालिया निकल चुका है, ये जो मैं चल रहा है ये भी अहंकार है। लेकिन ये नीचे की तरफ वाला है, नेगेटिव वाला। और फिर वो दूसरा अहंकार क्या है, अहंकार का अर्थ अहम, मैं दुखी। वो पंक्ति देखिए ना, मैं सुखी दुखी, तो ये जो दुखी वाला मैं है वो अहंकार ही है, वो भी विकल्प है। लेकिन एक अहंकार वो होता है जो अभिमान रूप होता है, और उसका ज्यादा प्रचलन है लोक में। अहंकारी किसको कहेंगे, अभिमानी को। पर यहाँ पर अध्यात्म में अहंकार किसको कहा, अभिमानी को तो कहा ही है अहंकारी। लेकिन उसके साथ में जो नेगेटिव रूप से मैं करता है, मैं दुखी, मैं अभागा, इस प्रकार से मैं ठुकराया हुआ, जितनी ऐसी सारी बातें आती है वो भी सब अहंकार ही है। इसी को विकल्प भी कहते हैं। अब इन संकल्प विकल्पों से कैसे मुक्त हो, उस धारणा को हटाने से, और दृष्टि का अभ्यास ही साधना है। आपको स्वाध्याय करके वो दृष्टि प्राप्त हुई, एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये भ्रम मात्र है, ये धारणाएं मिथ्या धारणाएं हैं। ये दृष्टि आपको मिली, तब इसका आप अभ्यास करिए, आप प्रैक्टिकल में इस बात को लाइए, उसका नाम है साधना। प्रैक्टिकल में लाएंगे तो क्या होगा, देखो जहां एकत्व बुद्धि नहीं है तो आपको अगर कोई कह दे कि देखो क्या चाल है इसकी, बिल्कुल इससे अच्छा तो बच्चे लोग चलते हैं, ये कैसा आड़ा टेढ़ा चलता है, उठपटंग शराबी जैसी चाल है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसकी चाल उसने देखी है वो विदल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल, तो मेरे को नाराज होने की क्या बात है। वो तो पुद्गल की चाल को देखकर उसके बारे में कमेंट कर रहा है, मेरा क्या जाता है। बिल्कुल बेसिक ये साधना है। अब यहां पढ़ लो सब कुछ और वहां जाकर जरा जरा में मूड खराब हो जाए तो साधना नहीं है। जरा सी बात सुनी है, जरा सा वातावरण बना तो चेहरा ऐसा बन गया कि फोटो खींचने लायक नहीं रहा, क्या मतलब। ये साधना नहीं है। साधना उसको कहते हैं कि हर स्थिति में संतुलन बना रहे, संतुलन ही साधना है। परिस्थिति मनस्थिति न बन पाए यही साधना है। दृष्टि का अभ्यास साधना है। कितनी परिभाषा बना लो साधना की, और क्या आनंद है साधना में, जिसको प्राप्त हुआ है उससे पूछो। और वही कहते हैं कि तुम भी करके देखो। पर देखो एक बात और है कि जिनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ है वो भी किसी के प्रभाव में आकर कह सकते हैं कि तुम भी साधना करो, संभव है। लेकिन जिसको प्राप्त है, जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा था कि कुछ चिन्हों से आप पहचान सकते हैं कि वो कौन है जो आनंद की बात कर रहा है और वो कौन है जिसने आनंद का अनुभव कर लिया है। दोनों अलग होते हैं, बात करने वाले अलग होते हैं, काम करने वाले अलग होते हैं। काम करने वाले बात कम करते हैं, ज्ञानी बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। तो ऐसी कोई अलौकिक बात है। तो आज हमने एक गाथा का कहा था, तो एक गाथा हो गई और इसमें कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, उसके हाथ पांव की हलचली ने और उसके विचारों ने घड़ा बनाया। निमित्त नैमित्तिक भाव, उपादान उपादेय भाव, इन सब शब्दों का आपको परिचय हो गया। ओम शांति। जावाणी के ज्ञान दे सुखे लोकालो, सुवाणी मस्तक चारे तुमोधो, देखे माणी धारी तोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख छे।